તારીખ 1/9/1993 શ્રી સમયસાર ગાથા 181, 182 અને 183 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 18.
सभी के अनुभव भी एक सा है, इसलिए अभिप्राय भी सभी ज्ञानी का एक सा ही है। उसका दो आधार हमको मिलता है अलग अलग ज्ञानियों का। एक तो है देह से का वचनामृत, ऊपर वाला ऊपर, देह का वचनामृत 197 नंबर का वचनामृत है। वहां विज्ञान का प्रकरण जो लिया है वो समय सार के मोक्ष अधिकार की जो प्रारंभ की गाथा है प्रज्ञा छीनने वाली, पूरे विज्ञान का एक प्रकरण लिया है। देखिए अधिकार मोक्ष का है, लेकिन मोक्ष का कारण तो विज्ञान होता है, सम्यक दर्शन का कारण भी वेद ज्ञान है, स्वानुभव का कारण भी वेद ज्ञान है और मोक्ष का कारण भी वेद ज्ञान है। क्योंकि वेद ज्ञान की विधि प्रारंभ से लेकर पूर्णता पर्यंत बदलती नहीं, इस मार्ग की ये सुविधा है कि जो कार्य पद्धति शुरू से ही चालू होती है वही कार्य पद्धति से मोक्ष मार्ग वर्धमानता को प्राप्त होता है, तो वही कार्य पद्धति से पूर्णता होती है। तो यहां मोक्ष अधिकार में कहते हैं कि ज्ञान के और शुभाशुभ भाव क्रोध और उपयोग शब्द लिया, यहां शुभाशुभ भाव और ज्ञान दोनों की सूक्ष्म संधि में, मैंने दोनों के आसपास होने से जहां भी वो मिलते हैं, क्योंकि जीव की एक जीव की पर्याय में दो गुण की अवस्था है, इसलिए एक ही पर्याय में दोनों भाव हैं, लेकिन दोनों भाव एक नहीं है, अलग अलग है। तो जहां वो मिलते हैं वहां उपयोग को सूक्ष्म करके वहां प्रहार करना, उपयोग को सूक्ष्म करके तो वहां अपना तो मुद्दा वही है कि शुरुआत लेते हैं राग और ज्ञान की भिन्नता। आगे जा करके दूसरे पैराग्राफ में श्री क्या कहती है कि ऐसे स्वभाव विभाव के बीच में ज्ञाता धारा द्वारा स्वभाव को जुड़ा जान ले। ज्ञाता द्वारा मैंने ज्ञान का उपयोग पर्याय के द्वारा क्या बात है इसको अलग कर ले स्वभाव और विभाव। आगे कहेंगे कि आत्मा को विभाव से जुड़ा है तो पहले ज्ञान और सुभाषुभ भाव लिया उसी पर से स्वभाव विभाव लिया उसी पर से स्वभाव आत्मा और विभाव लिया। अब कहेंगे वो कैसे होता है अवस्था पर से पदार्थ का परिचय होता है बिना अवस्था किसी भी पदार्थ का पदार्थ के स्वभाव का या पूरा पदार्थ का परिचय नहीं होता और बिना परिचय पहचान नहीं होती होती है कहीं। एक भी ऐसा दृष्टांत अपवाद रूप से भी नहीं मिलेगा कि बिना परिचय किसी की पहचान हो सकते हो। परिचय वर्तमान व्यक्त अवस्था के बिना और व्यक्त अवस्था के अनुभव को बार बार अनुभव में लिए बिना परिचय नहीं होता और बिना परिचय पहचान नहीं होती। तो ये पहचान होने के लिए यही एकमात्र प्रोसेस है यही एकमात्र प्रक्रिया है कोई दूसरे प्रकार की प्रक्रिया नहीं मिल सकती। कोई बात द्रव दृष्टि प्रकाश के 466 नंबर के रचनामृत में इधर नहीं होगा जब दृष्टि प्रकाश थोड़ा रेफरेंस बुक इधर रखेंगे जो परिचित शास्त्र है तो वहां क्योंकि सूरानी जी कहते हैं कि पर्याय के अलावा ध्रुव को समझने का कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है कोई दूसरा उपाय ही नहीं है एक ही पंक्ति में उन्होंने ये बात कह दी है। और वही बात समझाने के लिए आगे पीछे इनके वचनामृत है 125 नंबर का और एक दूसरा है 506 नंबर का तो दोनों जगह 125 में और 506 में वो तो द्रव्य दृष्टि की इतनी जोरदार बात करने वाले सत्पुरुष भी कैसे पर्याय को बीच में ले आते हैं या इसका ये मतलब होता है कि ये भीतर में द्रव्य स्वभाव के तक अंदर में पहुंचने का अगर कोई चैनल है कोई रास्ता है तो ओनली चैनल दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए यहाँ ज्ञान से खास करके ज्ञान स्वभाव को ग्रहण किया जाता है। कुछ गुरुदेव कहते थे कि ये ज्ञान के उपयोग में ज्ञान के पर्याय में स्वभाव अंश व्यक्त है। क्या कहते थे स्वभाव अंश व्यक्त होने से यही ज्ञान लक्षण से या उस ज्ञान लक्षण के परिचय से पूरा ज्ञान स्वभाव की पहचान होती है। तो 144 गाथा में कही कि ज्ञान स्वभाव का निश्चय करना कहो पहचान करना कहो अस्तित्व ग्रहण करना कहो या स्वरूप निश्चय करना कहो प्रतिभास करना कहो एक ही बात है। तो दूसरा कोई उसका रास्ता है ही नहीं ज्ञान से ही ज्ञान स्वभाव ग्रहण किया जाता है। इसलिए ज्ञान लक्षण से ज्ञान स्वभाव की पहचान करने की चर्चा अमृतचंद्र आचार्य महाराज ने परिशिष्ट माटी की सारे 415 गाथा के के पिता में ये विषय खुला है, वो एक विकल्प और खड़ा हो गया, एक महत्वपूर्ण बात है पहचान करने की, वो तो आई नहीं गई पिता में। उन्होंने परिशिष्ट में इस बात को प्रश्नोत्तर छेड़ करके बिल्कुल स्पष्ट कर स्पष्ट किए। यहां तो ये दृष्टांत है, वास्तव में एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, उसका आगे जा करके ज्ञान और राग में उनको इस बात को इस दृष्टांत से सिद्धांत में ले आना है। तो वो समझ में आने इसलिए लिया है कि जैसे एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ का स्वचतुष्टय भिन्न भिन्न होता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, प्रत्येक परमाणु का, प्रत्येक जीव का, चाहे सजीव सजातीय पदार्थ हो चाहे विजातीय पदार्थ हो, अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से अपना अस्तित्व सर्वथा भिन्न रहता है, भिन्न रहता है उतना ही नहीं सर्वथा भिन्न रहता है, इसलिए कोई संबंध नहीं रखती वस्तु, क्योंकि दोनों के प्रदेश भिन्न है, दोनों के प्रदेश भिन्न है, प्रदेश माये अस्तित्व उनके पर्याय है, तो दोनों का क्षेत्र भिन्न है। जब एक क्षेत्र में दूसरा क्षेत्र का प्रवेश ही नहीं है, तो फिर एक वस्तु के दूसरे वस्तु का कोई कार्य कारण संबंध नहीं रह सकता। जैसे कि लौकिक न्याय में भी चोरी होती है, खून होता है, तो जिस पर आरोप आता है वो उस वक्त कहाँ थे, अभी तो बहुत बड़ा चैप्टर चला अपने पीएम का, प्राइम मिनिस्टर का, कि जब उन्होंने पैसे दिए तो उस वक्त वो कहाँ थे, उसका अस्तित्व कहाँ था, क्या कहते हैं कानून की भाषा में उसको कहते हैं, खास उसका शब्द है, तो वो कहाँ रहते हैं इस वक्त, उनके रहने उसका मौजूदगी कहाँ थी, अगर इसकी मौजूदगी है तो आरोप सिद्ध होता है, अगर मौजूदगी नहीं है आरोप सिद्ध होने का कोई सवाल नहीं रहता, आगे की कोई बात नहीं रहती। एक वस्तु की मौजूदगी में दूसरी वस्तु की मौजूदगी नहीं है। अब सवाल ये खड़ा हो सकता है कि हमारी आत्मा और हमारा शरीर, शरीर जो है वो पूरा आपका पूरा, तो उसमें खाली जगह नहीं है, वैक्यूम नहीं है, शरीर में कोई जगह वैक्यूम नहीं है, जहां भी खालीपन दिखता है वहां भी हवा तो है, पूरे पुद्गल भरे हुए हैं, कहीं भी वैक्यूम जिसको कहे ऐसी खाली जगह कहीं भी नहीं है। और आत्मा के प्रवेश जो है वही बराबर शरीर के आकृति है, उसी के बराबर है, इसकी जितना भी आकृति हो क्षेत्रफल हो उसके बराबर, फिर भी जीव के क्षेत्र में परमाणु, शरीर का एक परमाणु भी नहीं, और शरीर के किसी भी एक परमाणु में जीव का कोई प्रवेश नहीं, उसको परस्पर अवगाहन ऐसा नाम दिया है। ये अवगाहन शब्द जो है वो सिर्फ जैन परिभाषा में और जैन शास्त्र में मिलता है और अपनी जगह नहीं मिलता, इसलिए कि ये अवगाहन वाली जो वैज्ञानिक बात है वो तो कहीं जगह आई नहीं, इतने विज्ञान तक कोई पहुंचे ही नहीं, पदार्थ विज्ञान तक ही, और कृपालु देव ने उसकी परिभाषा बहुत सुंदर बनाई आसानी से समझ सके, इसलिए कि एक पदार्थ और दूसरा पदार्थ का आकाश की अपेक्षा एक क्षेत्र होने के बावजूद भी क्या दोनों का अपना अपना क्षेत्र उत्पादन ही है, अलग अलग है। उपादान में जीव के क्षेत्र में परमाणु है, परमाणु के क्षेत्र में जीव है, लेकिन दोनों में दोनों को उदाहरण देने वाला तो आकाश है मुख्य रूप से, वो निमित्त रूप है, दोनों को एक ही निमित्त है, आकाश के एक ही प्रदेश में दोनों रहे, शरीर भी जीव भी। लेकिन उपादान का क्षेत्र अलग अलग है, तो क्या परिभाषा बनाई उन्होंने कि एक क्षेत्र पे, मैंने आकाश की अपेक्षा से एक क्षेत्र पे रहने पर भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जो अपना स्वरूप को त्याग किए बिना अपने स्वरूप में ही रहने वाले पदार्थ हैं, उसी को एक दूसरे का अवधान कहने में आता है। तो जीव ने अपना स्वरूप छोड़ा नहीं और शरीर ने अपना स्वरूप नहीं छोड़ा, भले ही आकाश के हिसाब से एक एक क्षेत्र में रहने वाला है तो भी। अब जब दोनों एक क्षेत्र में रहता है तो भी एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, और जब एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है तो दोनों के प्रवेश भिन्न है। दोनों के प्रदेश भिन्न होने से एक की मौजूदगी में दूसरे की मौजूदगी नहीं है, जब मौजूदगी नहीं हो तो क्या करेगा। इसलिए आत्मा का कार्य शरीर नहीं करता, शरीर का कार्य आत्मा नहीं करता। क्यों? एक की मौजूदगी में दूसरे की मौजूदगी का अभाव है, बिल्कुल सदंतर अभाव है आकाश का एक क्षेत्र होने पर भी। इसलिए उनमें एक सत्ता की अनुपपत्ति है, अनुपपत्ति मैंने प्राप्ति नहीं होना, उपपत्ति मैंने प्राप्ति, पर अनुपपत्ति मैंने प्राप्ति का अभाव। इसलिए एक के अस्तित्व में, एक की मौजूदगी में दूसरे की मौजूदगी का राग है, अर्थात दोनों की सत्ताएं भिन्न भिन्न है। और इस प्रकार जबकि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, तब उनमें परस्पर आधार आधेय संबंध भी नहीं है। कहां ले गए आचार्य महाराज इस बात को, ये दृष्टांत में से क्या बात लेना है और न्याय में कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों का अस्तित्व बिल्कुल भिन्न है, मौजूदगी भिन्न भिन्न है। जब मौजूदगी भिन्न भिन्न है तो यहाँ एक बात को और सिद्ध की कि एक के आधार से दूसरी वस्तु नहीं है, शरीर के आधार से हमारी आत्मा नहीं और हमारे आत्मा से शरीर का कोई आधार नहीं है। डॉक्टर लोग ना बोलेंगे, यदि आपकी आत्मा जो है वो तो शरीर के आधार से है, लेकिन अपने मुमुक्षु डॉक्टर ये बात नहीं कहते, नहीं कहेंगे। बहुत से डॉक्टर हैं हमारे मुमुक्षु भी, समय सार पढ़ने वाले बड़े बड़े बहुत से डॉक्टर हैं, वो कहेंगे कि नहीं, समय साल जो कहते हैं आचार्य महाराज कहते हैं वो सही कहते हैं, हमारा ज्ञान है तो उसमें पर्याप्त नहीं है या सही नहीं है। क्यों? तो शरीर के आधार से अगर आत्मा जिंदा रहती है तो आत्मा का अभाव हो जाएगा, लेकिन अनादि अनंत शाश्वत पदार्थ आत्मा, आत्मा का अस्तित्व कितना है, अनादि अनंत आयु धरने वाला एक पदार्थ है, ऐसा तो परमाणु भी ऐसा ही है। और ये वर्ण साइंस में विकृत है कि एक भी पदार्थ का पूरा नाश नहीं होता, उसकी अवस्थाएं पलटती है, नया पैदा नहीं होता और किसी का अभाव भी नहीं होता, ये तो उनको मानना पड़ता है। इसलिए किसी का आपस में आधार आधेय संबंध नहीं है, आधार आधेय संबंध नहीं होने से हमारे आधार से जो पराधीनता होती है हमारे परिणाम में, और ये पराधीनता एक दीनता के परिणाम होने से दुख की उत्पत्ति यहां से चालू हो जाती है। किसी भी जीव को दुख होने का ये मूल कारण है, और ये मूल कारण बिल्कुल साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। कि पाश्चात्य देशों के लोग मल्टी मिलियनर्स होने के बावजूद भी दुखी क्यों? क्योंकि इनकी दीनता बढ़ गई। मुझे वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, उतना चाहिए, उतना चाहिए, उतना चाहिए, कि उसकी जो जरूरत है, जितनी जरूरत बढ़ी उतनी दीनता बढ़ी। गुरुदेव क्या कहते थे जरूरत वाले को? क्या कहते थे? भिखारी कहते थे। रोगी कैसे को, कैसे आदमी को कहते थे? हिज हाइनेस भावनगर, भावनगर के महाराजा उस जो थे वो स्वामी गुरुदेव के प्रवचन सुनने को आए। सारे सौराष्ट्र में बड़ा उत्सुकता था, उनके आमदनी और एरिया बड़ा था। बोले कि आपकी जरूरत ज्यादा है, हम लोगों की कम है। जिसकी जरूरत कम है वो छोटा भिखारी है, जिसकी जरूरत ज्यादा है वो बड़ा भिखारी है। महाराजा को भी भिखारी कहने वाले भी कोई होते हैं, जो महाराजा के भी महाराजा होते हैं। क्या उनको कोई चंदा वंदा भी दिखाना नहीं, कोई अपेक्षा वृत्ति तो है नहीं। निर्भीकता से सत्य के स्थापन निर्भीकता से ही हो सकता है। जिसको दीनता हो, जिसको कोई अपेक्षा हो, किसी भी प्रकार के अपेक्षा प्राय दो प्रकार की मुख्यतया ही, एक आर्थिक और एक मान सम्मान की। दो में से एक अपेक्षा भी रही वो सत्य का प्रतिपादन निर्भीकता से कर ही नहीं सकता। क्यों? कि जिससे वो अपेक्षा रखते हैं उसको बुरा तो नहीं लग जाएगा। ये भान में वो बोलता है, जो कुछ प्रतिपादन करता है उस भान में रहता है, तो उनको सत्य का प्रतिपादन इससे होना मुश्किल है। जो ज्ञानी होते हैं उनको तो कोई अपेक्षा होती ही नहीं, और अपेक्षा होती है वो ज्ञानी कभी होते नहीं। ज्ञानी की परिभाषा। इसलिए प्रपाल जी ने तो बहुत सुंदर व्याख्या की है इसकी। अंतरंग निष्प्रता ये ज्ञानी का लक्षण है, जो अंतरंग से निष्प्र होते हैं। बाहर में चाहे ज्ञानी प्रवृत्ति करते हो अपने हृदय के अनुसार, फिर भी अंतरंग से वो उतने निरपेक्ष होते हैं कि मेरा स्वरूप बिना किसी के अभी ही पूर्ण है। आता है कि दूरदर्शन प्रकाश के पत्र में वो बात आई है, चर्चा मैंने ये खुद के शब्द में लिखी हुई बात है, बिना किसी के अभी ही मैं पूर्ण हूं। यानी मेरा स्वरूप निरालंब निरपेक्ष है, न किसी का आलंबन की जरूरत, न किसी की अपेक्षा की जरूरत। और इतना पूर्ण सामर्थ्य से और सुख से भरा हुआ है कि अपने सामर्थ्य के लिए किसी की जरूरत पड़े तो उसको सामर्थ्य नाम दे देना भी बेकार है, उसको सामर्थ्य कह ही नहीं सकते। ऐसा पदार्थ होने से यानी तो सहज निष्प्रता बनी रहती है, कोई कृत्रिमता भी नहीं करनी पड़ती है। अंतरंग निष्प्रता मूल बात है कि मैं निर्लोभी हूं, मैं निष्प्र हूं, ऐसा आडंबर नहीं करते। अंतरंग से वो निष्प्र होते हैं, उसी को ज्ञान कहते हैं, ऐसा शब्द लिया है। तो कहते हैं यहां पर कि आधार आधेश संबंध जब दो पदार्थ में है ही नहीं, इसलिए प्रत्येक वस्तु का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा रूप मैंने दृढ़ता पूर्वक रहने रूप ही आधार आधेय संबंध है। अपना वस्तु ही आधार है और अपनी वस्तु ही आधेय है। एक दूसरे का दो पदार्थ में आधार आधेय संबंध नहीं है। तो वस्तु कैसे टिकती है, किसके आधार से, कि अपने सामर्थ्य से, सामर्थ्य के आधार से, टिकने वाला भी स्वयं और टिकाने वाला भी स्वयं। बस यहां से दीनता खत्म होती है, कोई दीनता पे रहने वाली नहीं है। अब इस बात को पहले जो सिद्धांत गाथा में आया कि ज्ञान में क्रोधाधिक ने, क्रोधाधिक की मौजूदगी में ज्ञान ने, ज्ञान की मौजूदगी में क्रोधाधिक ने, अब मूल बात पर आते हैं, अब सिद्धांत पर आते हैं। इसलिए ज्ञान जो कि जानन क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, आगे तो वो वस्तु की प्रतिष्ठा रख दी कि अपने स्वरूप में अच्छी तरह प्रतिष्ठित मैंने दृढ़ता पूर्वक रहना, अविचल रूप से रहना, अपने स्वभाव से, अपने स्वरूप से विचलित कभी नहीं होना, ऐसा एक वस्तु का स्वरूप है। ठीक उसी दृष्टांत अनुसार ज्ञान जो कि जानन क्रिया रूप, यहां ज्ञान स्वभाव नहीं लिया, ज्ञान गुण नहीं लेना, देखिए बात पर यह कि कह रहे हैं उपयोग शब्द लिया, कुंती भगवान ने तो उपयोग शब्द ही वो सूचित करता है, वो पर्याय ज्ञान का व्यापार, ज्ञान की क्रिया। इसकी टीका करते हुए टीकाकार आचार्य नाराज थे कि इसलिए ज्ञान जो कि जानन क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, अविचल रूप से, जानने का कार्य हो रहा है सभी जीव को, एक सेकंड के लिए बंद कर दो, बंद करना चाहे तो भी बंद हो सकेगा नहीं। अब ज्ञान करना है नहीं करना है सवाल ही पैदा नहीं होता है। जो हो ही रहा है इस तरह हमारी हो रहा है कि जिसको बंद नहीं किया जा सकता, सर्वथा तो बंद नहीं किया जा सकता, एक सेकंड के लिए बंद नहीं किया जा सकता, उसको करना क्या। जब यही वस्तु की वैज्ञानिक परिस्थिति है तो ज्ञान का कर्तृत्व खत्म हो जाएगा, फिर राग का कर्तृत्व का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब अकर्ता स्वभाव का अवलंबन होता है, अवलंबन पर्याय को मिलता है स्वभाव का, तो सहज ही वस्तु परिणमती हुई देखने में आती है, परिणमन करने का वहां भाव या कर्तृत्व का भाव आता ही नहीं, क्योंकि वस्तु स्थिति नहीं है, अवकाश ही नहीं है कि हम करें, वो तो स्वतः ही हुए जा रहा है परिणाम। इसलिए ज्ञान जो कि ज्ञानन क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, इस ज्ञान के जानन क्रिया को विचलित करके जानने का अभाव हो जाए, ऐसा बनने वाला नहीं है, इतनी दृढ़ता से ये प्रतिष्ठित है। यहां एक और विषय का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है कि हमें परिणाम अनुभव में आता है, हमें परिणाम दिखता है, परिणाम प्रकट होने से अनुभव गोचर है, इसलिए परिणाम को पर्याय को हम समझ सकते हैं। लेकिन स्वभाव को कैसे समझे या कैसे ग्रहण करें, ये हमारी समस्या अवश्य है। तो यहाँ जो एक बात चली हुई, ये ज्ञान सतत हो रहा है, सतत चालू रहता है और कभी नहीं बंद होता है। ये जो ज्ञान का सातत्य है वो किसको बताता है, किसको प्रदर्शित करता है, किसको दिखाता है, ये मेरा प्रश्न है। इसकी सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। जैसे हमारे यहाँ तेल के कुएं निकलते हैं, गैस के कुएं निकलते हैं, 2-3 हजार मीटर वो नीचे उसका बोर होता है, यहाँ से फिर वो जो डिपॉजिट पड़ी है वो निकलती है, तो वो सतत निकलता रहता है, बिना पंपिंग, कोई पंप लगाए बिना वो निकलता है, सतत निकलता है। इससे क्या मालूम पड़ता है कि वहां गए बिना इतने ज्ञान जो कि ज्ञानन क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, इस ज्ञान के जानन क्रिया को विचलित करके जानने का अभाव हो जाए ऐसा बनने वाला नहीं है, इतनी दृढ़ता से ये प्रतिष्ठित है। यहां एक और विषय का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है कि हमें परिणाम अनुभव में आता है, हमें परिणाम दिखता है, परिणाम प्रकट होने से अनुभव गोचर है, इसलिए परिणाम को पर्याय को हम समझ सकते हैं। लेकिन स्वभाव को कैसे समझे या कैसे ग्रहण करें, ये एक हमारी समस्या अवश्य है। तो यहाँ जो एक बात चली हुई, ये ज्ञान सतत हो रहा है, सतत चालू रहता है और कभी नहीं बंद होता है। ये जो ज्ञान का सातत्य है वो किसको बताता है, किसको प्रदर्शित करता है, किसको दिखाता है, ये मेरा प्रश्न है। इसकी सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। जैसे हमारे यहाँ तेल के कुएं निकलते हैं, गैस के कुएं निकलते हैं, 2-3 हजार मीटर वो नीचे उसका बोर होता है, यहाँ से फिर वो जो डिपॉजिट पड़ी है वो निकलती है, तो वो सतत निकलता रहता है, बिना पंपिंग, कोई पंप लगाए बिना वो निकलता है, सतत निकलता है। इससे क्या मालूम पड़ता है कि वहां गए बिना, इतने भीतर में गए बिना उसका डिपॉजिट कितना बड़ा है, वो भंडार कितना बड़ा है, उसका आंकड़ा वो प्रसिद्ध करते हैं कि इतने करोड़ क्यूबिक घन मीटर, क्यूबिक मीटर मैंने घन मीटर, ये चीज वहां पड़ी है। कार्यकारी मालूम हुआ, अगर बीच में बंद हो जाता, बीच में चालू होता, बीच में बंद हो जाता, दम नहीं है, छोड़ दे। लेकिन सतत निकलता है और जोर से निकलता है, तो उसको सामर्थ का मान आ जाता है कि कितना बड़ा है। वैसे हमारा ज्ञान सतत निकलता है, उसके सातत्य का अनुभव होता है, तो हमारे ज्ञान सामर्थ्य, मैंने ज्ञान स्वभाव का रूप में पता चल जाता है। जिसका पता मिल गया वहां पहुंचना आसान है। जिसका पता नहीं मिले बगल में रहने वाले को भी ढूंढ सकते, मिल सकते, पहुंच सकते नहीं। अपने गली में रहता है, बाजू के मकान में हो, पता ही नहीं हो तो कहाँ सारे कलकत्ता में ढूंढेंगे। पता मिल गया कितना भी दूर हो कोई बात नहीं। यहाँ तो पता भी मिलता है पर उसकी समीपता, समीपता कहना थोड़ा अनुचित लगता है। तो स्वयं के रूप में पता लगता है, इसकी समीपता क्या कहें, कैसे कहें, तो स्वयं के रूप में इसका पता चलता है कि मैं ही हूं। ये तो कहीं आना जाना है ही नहीं, मैं ही हूं, मैं मेरे परम स्वरूप हूं, परम आत्म स्वरूप होने से मैं ही परमात्मा हूं। योगिंद्र देव लिखते हैं अपने, योगिंद्राचार्य हुए परमात्मा प्रकाश के रचयिता, बहुत समर्थ आचार्य हुए, जिन मंदिर में देव जी से तन मंदिर में देखने में आता है। क्या जो जिन मंदिर में जिन देव है वो तो तन मंदिर में देखने में आता है, और जो जिन मंदिर में उसको खोजता है उस पर मुझे तो हंसी आती है। क्या कटाक्ष कर दिया है उन्होंने आचार्य महाराज ने, कैसा कटाक्ष किया कि लोग जिन मंदिर में देव को खोजने को जाता है तो मुझे हंसी आती है कि ये तो तेरे तन मंदिर में खड़ा है, इधर नहीं जाके तो उधर क्यों जाता है, ऐसा करके एक उलाहना दिया है। क्यों कि परलक्ष को छोड़ करके स्वलक्ष से अपने स्वरूप को ग्रहण करो, ग्रहण करो उतना ही नहीं त्वरा से ग्रहण करो। कृपाल देव के वचनामृत है 17 साल पहले के, कितनी छोटी उम्र में है, 16 साल की उम्र में लिखे होंगे अंदाज, नजदीकी उम्र लगाया तो। अपने स्वरूप का स्वद्रव्य का त्वरा से ग्रहण करो, त्वरा मैंने शीघ्र, शीघ्र माने अभी ही, कोई उधारी का व्यापार उसमें नहीं है। बहुत संकेत भरा है, गुरुदेव के बहुत प्रिय वचन है। इस ग्रंथ में, पूरा ग्रंथ में बहुत से वचनामृत हैं, लेकिन गुरुदेव श्री ने यही वचनामृत को पसंद किए और अपने आयु के अंतिम भाग में सारे द्रव्य सूत्र का अध्ययन करने के बाद उन्होंने जो परमात्माओं में से आचार्यों के बड़े बड़े सब्जेक्ट गाथाएं सिलेक्ट की, पसंद की, इसके साथ ये 10 वचनामृत को भी पसंद कर लिया है, जो 17 साल के पहले पहले लिखा हुआ है और हमने इसका प्रकाशन किया है भावनादर्शन प्रवचन नवमी भाग 1 में। प्रवचन आए हैं, पढ़ने लायक है, उन्होंने कितना मूल्य दिया है प्रवचन करते हुए कि ये 12 अंग का सार है। क्या कहा है, 12 अंग का है सार, इतने वचन में 12 अंग का सार उसी उम्र में भर लेना, ये इसकी महिमा को प्रदर्शित करते हैं। कितने महिमा धारक व्यक्ति थे, इधर कोई व्यक्तिगत का विषय नहीं समझना चाहिए। क्यों कि जो गुणधारी होते हैं उनकी महिमा करना ये व्यक्तिराग नहीं है, ये गुणानुराग है। व्यक्तिराग जब कहा जाता है कि जो गुण नहीं हो उसका प्रशंसा करे, महिमा करे, उसको व्यक्तिराग बोला जाता है। लेकिन गुण धारण जिसने किया हो तो गुण प्रकट किया हो उसकी महिमा करना, प्रशंसा करना, स्तुति करना, ये व्यक्तिराग नहीं है। लेकिन ये गुणानुराग है, नाम एक व्यक्ति का होता है, अनादि अनंत ज्ञानियों का अभिप्राय इसमें समाविष्ट है। एक ज्ञानी की प्रशंसा में अनंत ज्ञानियों की महिमा है, पर एक ज्ञानी की अवमानना में अनंत ज्ञानियों की अवमानना है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के नाम से नानुवाद किया जाए तो वहां कोई आपत्ति विवाद लाना नहीं चाहिए। बीच में कहीं पहलों से स्पष्टीकरण इसलिए मैं देता हूं कि कई प्रकार के ऐसे प्रश्न हमारे सामने आते हैं। यहां जानन क्रिया अपने स्वरूप में ज्ञान जानन क्रिया के रूप में अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है। अब जानन क्रिया का दो रूप है। इधर इसकी चर्चा आचार्य महाराज ने नहीं की क्योंकि वो तो एक पर्टिकुलर मुद्दे पर खास मुद्दे पर जाना चाहते हैं, लेकिन जो स्पष्टीकरण में थोड़ी इसलिए है कि ज्ञान में क्या लेना है। हमारा परिचय वो है कि जो भिन्न भिन्न पदार्थ को जानता है उसको हम ज्ञान कहते हैं, उतना ही हमारा परिचय है। मैंने ये ज्ञान का एक अधूरा परिचय है, पूरा परिचय नहीं है। ज्ञान का दो रूप है। पूज्यपाद स्वामी ने ये बात कही सर्वार्थ सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि ये तत्वा सूत्र की टीका है। तत्वा सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है मोक्षशास्त्र जो आजकल श्वेतांबर दिगंबर दोनों आमना को स्वीकृत है, मान्य है। दोनों संप्रदाय इस शास्त्र को अपना शास्त्र मानते हैं। एक साई सूत्र है, कहीं दिगंबर आचार्यों ने टीका की है, उसमें सर्वार्थ सिद्धि है, और भी दो तीन टीकाएं हैं, राजवार्तिक है, श्लोक वार्तिक है। ये तीनों टीका बहुत प्रसिद्ध है दिगंबर साहित्य में। उसमें सर्वार्थ सिद्धि में भगवान पूज्यपाद स्वामी ने ये बात कही कि इसका ज्ञान का दो रूप है, ज्ञानाकारस्थ ज्ञेयाकारस्थ। ज्ञानाकार भी ज्ञान होते हैं और ज्ञेयाकार भी ज्ञान होते हैं। तो यहां जो जानन क्रिया रूप ज्ञान है जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है वो ज्ञेयाकार ज्ञान नहीं लेना है, ज्ञानाकार ज्ञान लेना है। ऐसा क्यों ज्ञाकार ज्ञान नहीं ले हम, ये प्रश्न हो सकता है, आपने उठाते हैं मैं उठाता हूं। इसलिए कि गेज बदल जाता है तो ज्ञाकार ज्ञान वो बदलता रहता है, वो एक सा रहता नहीं। तो स्वरूप कैसा है, एक रूप स्वरूप में द्वैत नहीं है, दो कणा नहीं है, ऐसी एक रूपता है, उसको अद्वैत भी कहते हैं। अद्वैत शब्द मूल जैन परिभाषा का है, जो वेदांतियों में बहुत चलता है, लेकिन ये मूल जैन परिभाषा का एक रूप अखंड अभेद अद्वैत स्वरूप आत्मा है। उसका कोई बाह्य रूप देखना हो, प्रसिद्ध रूप देखना हो, तो ये ज्ञान सामान्य रूप ज्ञानाकार है। ज्ञान विशेष रूप जो ज्ञेयाकार ज्ञान है तो ज्ञान ही, लेकिन ज्ञेय के आकृति रूप जो ज्ञान के पर्याय है वो क्षण क्षण में विकसित होती है। तो स्वभाव के साथ, त्रिकाली स्वभाव के साथ, एक रूप स्वभाव के साथ इसकी सुसंगतता नहीं बैठती है। इसलिए 15 गाथा में ये ज्ञाकार ज्ञान को ज्ञान विशेष कह करके उसका उसको तिरोभूत करने का उपदेश दिया और ज्ञान सामान्य को आविर्भूत करने का उपदेश दिया है। क्यों कि यहां से ये ज्ञाकार ज्ञान से जीव सरकता हुआ ज्ञेय के प्रति चला जाता है, अनादि से इसकी परिणमन की स्थिति ज्ञेय के अवलंबन से परिणमन की स्थिति है और दूसरे का आधार ज्ञेय हुए खड़ा है। और ज्ञान और ज्ञेय का निमित्त नैमित्तिक संबंध में जैसा तो शीशा होता है, दर्पण होता है, दर्पण में अन्य पदार्थ की आकृति का प्रतिबिंब आता है, वैसे चैतन्य दर्पण है ज्ञान का पर्याय, उसमें अनेक बाह्य पदार्थ की आकृति का प्रतिबिंब झलकता है जिसको प्रतिभास कहते हैं, जैसा है वैसा भाष्यमान होना उसको प्रतिभास कहते हैं। वहां अपने गुजराती में लपसनी जिज्ञासी उबड़िए तो लपसी जाए, क्या कहते हैं हिंदी में फिसल जाना ये फिसल जाने की जगह है। ज्ञाकार ज्ञान से जीव फिसलता हुआ ने का अवलंबन ले लेता है, और जब ने का अवलंबन ले लेता है तो क्या होता है, आचार्य महाराज ने 15 गाथा में उसको ने रोलुकता कहे, क्या कहा, फिसलने से क्या हो गया, रोलुकता पैदा हो गई। मिठाई है अच्छी है, मिठाई पक्का तो क्या हुआ कि ज्ञान में प्रतिभा हुआ, मिठाई है जो विशेष ज्ञान का आविर्भाव होने से क्या पैदा हुआ कि जीव ज्ञेय रूप हो जाता है। ये रूपता से निभाव की मैंने विकार की उत्पत्ति हो जाती है और उससे दुख की उत्पत्ति भी हो जाती है, क्योंकि तो निभाव और दुख एक ही पर्याय में होता है, परिणाम आदि होता है। निभाव होता है तो विपरीतता है, दुख होता है दूसरा फैक्टर है इसी पर्याय का, और मलिनता होती है तो तीसरा फैक्टर है उसी पर्याय का, ये तीनों बात एक साथ पैदा हो जाती है। तो जीव के परिणाम में जब जब ज्ञान विशेष का आविर्भाव होता है तो नील रूप बन जाता है, उसके परिणाम में मलिनता मैंने अपवित्रता उत्पन्न होती है, साथ ही दुख होता है, साथ ही अपने स्वरूप से विरुद्ध भाव में वो लेने होता है,
सदा का प्रवृत्ति तो है थी।
ये होती है वैज्ञानिक सॉल्यूशन है, क्या इस समस्या का जो समाधान है वो वैज्ञानिक तौर से है कि दुख का मूल उत्पन्न होने का कहां है, फिर बढ़ता है लेकिन मूल कहां से बढ़ता, अगर रूट कॉज ऑफ द डिजीज खत्म किया आगे की सब बात खत्म, फिर कोई तकलीफ नहीं है। तो उसको मूल को, मूल कारण को देखें और जो सही बात है सही उपाय है उसका इलाज करें तो ये हो सकता है। तो यहाँ जो है इसलिए इसका स्पष्टीकरण आवश्यक है कि ज्ञान मैंने ज्ञान सामान्य, ज्ञान मैंने ज्ञानाकार ज्ञान है, और जैसे विभाव में मलिनता और दुख साथ होता है वैसे ज्ञाकार ज्ञान स्वभाव, ज्ञानाकार ज्ञान स्वभाव रूप होने से उसमें सुख और पवित्रता मौजूद रहती है, सुख भी है वहां, ये सुख का रूप कौन है, ये मूल यहां से सुख यहां से उत्पन्न होता है, सुख कोई चीज मिलने से नहीं है, दुख कोई चीज नहीं मिलने से नहीं है, इष्ट की अप्राप्ति में दुख नहीं प्राप्ति में सुख नहीं, अनिष्ट की प्राप्ति में दुख नहीं अप्राप्ति में सुख नहीं, लेकिन यहां से सुख दुख की उत्पत्ति है, ये बिल्कुल वैज्ञानिक है।
ज्ञान संबंध निकालिए
पर्याय में, पर्यायत्व को देखेंगे तो ज्ञान सामान्य दिखेगा नहीं, क्योंकि पर्याय तो खुद विशेष फैक्टर है, इसलिए पर्याय में होने पर भी उसके पर्याय के रूप में नहीं देख करके उसको द्रव्यपणे देखना चाहिए। ये बात प्रश्न उठा करके लक्ष्य लक्षण की चर्चा में दी। एक बहुत सूक्ष्म विषय यहाँ खुलता है, ये चर्चा में से बहुत सूक्ष्म विषय खुलता है। सामान्य तौर से हमारी समझ यह है, जो मोटी मोटी समझ है, स्थूल समझ है, वो है कि पर्याय अनित्य है और स्वभाव नित्य है। इसलिए पर्याय व्यवहार होने का विषय है और नित्य स्वभाव निश्चय होने का विषय है। तो फिर 142 गाथा के पीछे जो 20 कलश आया उसमें इसका निषेध क्यों किया? अनित्य का निषेध किया तो नित्य में नित्य क्या, नित्य का निषेध क्यों किया? तो ये बात खुली है पंचाध्यायी काल में खुली है। तो पंचाध्यायी तक के जब त्रयान्योग का एक बहुत बड़ा परिणाम है कि मूल जो स्वरूप है जीव का न केवल नित्य भी है न केवल अनित्य भी है, लेकिन उभय स्वरूप भी नहीं होते हुए अनुभय स्वरूप है। क्या? उभय स्वरूप भी नहीं होते हुए अनुभय स्वरूप है, मूल स्वरूप है ये अनुभय स्वरूप है। वो बात उन्होंने लिया अनुभव मैंने क्या कि न केवल नित्य भी है न केवल अनित्य अनित्य भी है। अगर वो केवल नित्य होता तो उपयोग लक्षण में स्वभाव अंश पाया नहीं जाता। पर यही उत्तर उन्होंने ये कर दिया है परिशिष्ट। थोड़ा विषय वैज्ञानिक है और सूक्ष्म भी है लेकिन बहुत लाभ का कारण है। अगर पल्ले पड़ गया तो बहुत लाभ का कारण है। ऐसा कौन सा लक्ष्य है? प्रश्न करते हैं, परिशिष्ट में पढ़ता हूं आखिर का जो प्रश्न है, इसके पहले का प्रश्न है लास्ट बट वन। ऐसा कौन सा लक्ष्य है कि जो ज्ञान की प्रसिद्धि के द्वारा उससे भिन्न प्रसिद्ध होता है? लक्ष्य तो द्रव है, आप कहेंगे स्वरूप है, पर लक्षण है वो ज्ञान क्रिया है, ज्ञान उपयोग है, वो लक्षण है। तो ऐसा कौन सा है कि जो लक्षण से लक्ष्य भिन्न है? ऐसा किस प्रकार का है, क्या बात है उसमें? उत्तर देते हैं कि ज्ञान से भिन्न लक्ष्य नहीं है, ज्ञान लक्षण से लक्ष्य भिन्न नहीं है, लक्ष्य स्वभाव है और लक्षण ज्ञान का पर्याय है, ज्ञान का उपयोग है, क्रिया है। क्योंकि इसका लॉजिक देते हैं, क्योंकि ज्ञान और आत्मा में द्रव्यपण से अभेद है। क्या लिया? द्रव्यपण से अभेद है। ज्ञान की पर्याय में पर्यायत्व को लक्ष्य में से हटा करके तुम देखो, ज्ञान सामान्य में तुम्हें द्रव्यपना मालूम पड़ेगा, ऐसा कहते हैं। तो तुम उनकी भाषा में समझाते हैं, स्वरूप स्वभाव सामान्य ऐसा है कि न उसमें कोई द्रव्य का भेद, गुण का भेद और पर्याय का भेद, कुछ भेद मालूम में नहीं पड़ता है, उसी को ही ज्ञान मात्र कहता है, कहते हैं आचार्य महाराज। द्रव्य गुण पर्याय तीनों में होते हुए भी न द्रव्य रूप है न गुण रूप है न पर्याय, तीनों में एक भेद रूप नहीं है, तीनों में होते हुए ही तीनों से निर्भेद है, इसी का नाम द्रव्य स्वभाव है, इसी का नाम मूल स्वरूप आत्मा है।
यहाँ भी जो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिया जाए तो ज्ञान जो जानन क्रिया है, अब पढ़िए, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है। क्या लिखते हैं? ज्ञान जो जानन क्रिया रूप है वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, स्वरूप रूप प्रतिष्ठित है। अब नजर आता है आचार्य महाराज के कहने का क्या अभिप्राय है और कितनी गहराई से वो लिख रहे हैं। ज्ञान जो जानन क्रिया है वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, तो स्वरूप रूप प्रतिष्ठित है। लेकिन हम भेद रूप देखेंगे, भेद बुद्धि में खड़े रहकर के पर्याय रूप देखेंगे, लक्षण का भेद देखेंगे, द्रव्य का भेद या गुण का भेद देखेंगे, हमें कुछ पल्ले पड़ने वाली बात नहीं है।
जानन क्रिया को स्वभाव नहीं लिया गया
है,
जानन क्रिया को स्वभाव में प्रतिष्ठित नहीं किया गया, ज्ञान को पर्याय में लिया और जानन क्रिया को स्वभाव
क्रिया जो है वो तो पर्याय है,
ज्ञान को लिया पर्याय,
ज्ञान भी पर्याय है, जानन क्रिया भी पर्याय है, लेकिन अपना स्वरूप माने क्या?
स्वभाव
तो उसमें स्वभाव है, उसमें स्वभाव है। हम आपको वेद विज्ञान स्वभाव विभाव में कराना चाहते हैं, सिर्फ राग और ज्ञान क्रोध और उपयोग में, लेकिन इसके द्वारा जो वेद ने कहा, इसके ज्ञान धारा के द्वारा ज्ञायक स्वभाव को पकड़ो, मैंने ऐसा लिखा है, इसके द्वारा। सुगंध ने क्या था? बिना पर्याय अंतर में उतरने का, ध्रुव स्वभाव तो पहुंचने का कोई दूसरा इलाज नहीं है। 466 में वो बात लिया, 125 में ऐसा प्रश्न उठाया है। तो पर्याय दिखती है, ध्रुव तो दिखता नहीं है, क्या करे था ऐसा प्रश्न उठाया। तो पर्याय दिखती है तो किस आधार पर खड़ी है? जो पर्याय दिखती है तो अड्डा खड़ी है, बिना द्रव को पर्याय खड़ी है या द्रव के साथ खड़ी है? हीरा की चमक देखते हो उसमें आप ये कह सकते हो क्या कि हमको तो चमक ही दिखती है, हीरा नहीं दिखता है, ऐसा कोई कह सकता है क्या? अगर कहता है तो वो कल्पना विहार करता है, वास्तविक ज्ञान नहीं है, पदार्थ का वो वास्तविक ज्ञान हो ही नहीं सकता। ऐसे एक प्रैक्टिकल नॉलेज में ले आते हैं, जैसे हीरा को चमक से हम देख लेते हैं, सिर्फ चमक तो हम चमक को नहीं देखते हैं, पूरा हीरा को देख लेते हैं। ऐसे ज्ञान को ज्ञान स्वरूप या आत्मा स्वरूप के साथ देख लेना चाहिए। पर अगर ऐसा नहीं देखते हैं तो हमारे देखने की जो कार्य पद्धति है उसमें भूल है और ये गलत है। तो यहां से तो विधि में ले जाते हैं, क्या ले जाते हैं आचार्य महाराज? विधि में प्रवेश कराते हैं कि अपना अनुभव करने की कार्य पद्धति रीति क्या है। यहां से चलो, ज्ञान और राग जब भिन्न है तो ज्ञान में तुम देखो तुम्हें क्या दिख रहा है, ज्ञान में क्रियाकार दिखता है फिर वो कर दो दिखेगा, लेकिन उसको प्रयोग करो। ज्ञान में एक रूप नुर्देव की भाषा में प्रवचन में क्या कहते थे, स्वभाव है, उसको जरा विशेष इस पर और स्पष्टीकरण करेंगे। जो भी प्रश्न है कल उसको भी विचार करेंगे, इसके हाँ वो 6 निर्णय एक चीज है, क्योंकि विधि का विषय 12 अंग में कोई सूक्ष्माति सूक्ष्म विषय है तो विधि का है, जिसको इसका पता चल गया उसकी सब समस्या खत्म, उसका भी आप पारी समझे। Thank you.
धारा